अब इसके बाद इस पूरी सूरत का जो मेन थीम है ना उसकी बात हो रही है, समझ लीजिए चंद जुमलों में, फिर अगली बात को इंशाल्लाह किस्से की सूरत में पढ़ेंगे। अल्लाह सुब्हान तआला में बताते हैं, नंबर एक, अल्लाह की खातिर की गई कुर्बानियां जाया नहीं जाती। दूसरी बात है कि जब इंसान अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी देने की नीयत कर ही लेता है तो फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो शहीद हुआ, वो कटा, किसी ने उसको जलाया, किसी ने उसको मारा, वो दाएं गिरे या बाएं गिरे, उसका मुकाम जन्नत है। यानी आज भी जो लोग इस्लाम के नाम पर काटे जा रहे हैं वो अगर अच्छी नीयत पर है तो अल्लाह ताला उनको जन्नतों में लेके जा रहा है। फिर अगली चीज इससे क्या पता चलती है कि हक बयान करने की जुरत खोना, ये भी एक सादत की बात है। बहुत सारे लोग हक को हक समझते हैं लेकिन लोगों के डर की वजह से उसको बयान करने की जुरत नहीं पाते। फिर एक और चीज अगले किस्से से हम पढ़ेंगे कि हक की तरफ बुलाने वाला दूसरों की खैर का इतना हरीस होता है कि जीते जीते जिंदगी जिंदगी तो वो कोशिश करता है, मरने के बाद भी उसकी ख्वाहिश यही होती है कि लोगों को मेरा अच्छा अंजाम दिख जाए ताकि इसको देखकर ही वो हिदायत पे आ जाए। और एक और चीज इस वाक्य से हम सीखेंगे कि मुनकर पे खामोश नहीं रह सकता एक मोमिन, जो बंदा बन जाए अल्लाह का उसके साथ ये मामला नहीं होता। और एक और चीज हम सीखेंगे कि अल्लाह माल उसको भी देता है जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है और जिससे मोहब्बत नहीं करता, लेकिन ईमान की दौलत अल्लाह सिर्फ उसको देता है कि जिससे अल्लाह ताला मोहब्बत करते हैं। और हकीकत है कि ईमान ही वो सारे काम करवाता है जो भी हम इसमें पढ़ने लगे, क्योंकि हदीस में आता है कि तीन काम करने वालों को ईमान की मिठास मिल जाती है, जिसमें एक यह है कि उसको अल्लाह और उसका रसूल दुनिया की हर चीज से प्यारा हो जाता है। हम सब इन सारे क्राइटेरियंस पे खुद को चेक करेंगे। आइए वाक्या सुनते हैं और ये किस्सा फिर अगले बारे में भी जाएगा। इन्हें मिसाल के तौर पर इस बस्ती का किस्सा सुनाओ जब किसमें रसूल आए थे, इज अरसलना इलैहिम उस्नैन, हमने इनकी तरफ दो रसूल भेजे और उन्होंने दोनों को जुटला दिया, फिर हमने तीसरा मदद के लिए भेजा और इन सब ने कहा हम तुम्हारी तरफ रसूल की हैसियत से भेजे गए, बस्ती वालों ने कहा तुम कुछ नहीं मगर हमारे ही जैसे चंद इंसान। देखिए पैगाम देने वालों में खो गए, जिनकी नजर पैगाम पे होती है वो हिदायत के आखिरी मरहलों पे भी पहुंच जाते हैं, और जो पैगाम देने वालों के अंदर खो जाते हैं तो वो तो कई जगह बीच रास्ते में लटक जाते हैं। और खुदाए रहमान ने हरगिस भी कोई चीज नाजिल नहीं की, तुम तो महज झूठ बोलते हो। अब ये देखिए कितना भोंडा जवाब था, एक को भेजा, दूसरे को भेजा, दो न माने तो अल्लाह ने तीसरे को भेज दिया। قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون, बहसों में नहीं पड़े, अपनी सिपाहियां पेश नहीं की, बस ये कह दिया रसूलों ने कि हमारा रब जानता है कि हम जरूर तुम्हारी तरफ रसूल बनाकर भेजे गए और हम पर साफ साफ पैगाम पहुंचा देने के सिवा कोई जिम्मेदारी नहीं। क्या पता चला कि दाई ये दिन इधर उधर की बहसों में नहीं पड़ता, अपनी सफाइयां नहीं पेश करता। قالوا إنا تطيرنا بكم, बस्ती वाले कहने लगे हम तो तुम्हें अपने लिए फाले बद समझते हैं, यानी तुमने आके हमारे रंग में भंग डाल दिया, घर टूटने लग गए हैं, तलाकें होने लग गई हैं, शादियों का मजा खत्म हो गया, तुम तो बस अजीब और गरीब बातें में कहते हो, अगर तुम बस ना आए तो हम तुमको संसार कर देंगे और हमसे तुम बड़ी दर्दनाक सजा पाओगे। जरा सोचिए एक तड़पने वाले इंसान को लोग किस तरह से इस तरह की बातें करते हैं। रसूलों ने जवाब दिया तुम्हारी फाले पर तो तुम्हारे अपने साथ लगी हुई है, कहां पीछे पड़ा सूरत बनी इसराइल में नाम अमाल की सूरत में अल्लाह ताला कहते हैं कुल इंसान यानी जो बुरे काम करते हो इसकी सजा तुम्हें खुद मिलती है, क्या ये बात है तुम इसलिए करते हो कि तुम्हें नसीहत की गई, यानी तुम्हें जो गुस्सा आ रहा है उसकी सिर्फ वजह यह है कि तुम्हें नसीहत अच्छी नहीं लगती, असल बात यह है कि तुम हद से गुजर गए। नोट करते दें रवैये, चुटलाने वालों में ये सब कुछ होता है बल्कि तुम कौम मुसरिफून, तुम तो हद से गुजरी हुई कौम हो। अब देखिए वो नबियों की बात नहीं मान रहे, करीब वालों ने नबियों की कदर ना की लेकिन दूर से अल्लाह ने मदद भेजी, और अल्लाह की मदद दूर से आती है। याद रखिए ये एक सुन्नत तरीका है कि करीब से जब कोई चीज नहीं मिलती तो अल्लाह ताला उसको दूर से भेजता है। कौन था वो? इतने में शहर के दूर दराज गोशे से एक शख्स दौड़ता हुआ आया और बोला ए मेरी कौम के लोगों रसूलों की पैरवी इख्तियार करो, पैरवी करो इन लोगों की जो तुमसे कोई अजर नहीं चाहते और ठीक रास्ते पर हैं। और वमा लिया ला अबुदुल्लज़ी फतरनी व इलैहि तुरजऊन, तेईसवां पारा, आखिर क्यों न इस हस्ती की मैं बंदगी करूं जिसने मुझे पैदा किया और जिसकी तरफ तुम सबको पलट कर जाना है। करीब रहने वालों को वो बात समझ न आई जो दूर से आने वाले को समझ आ गई, क्योंकि उसकी नजर अल्लाह पर थी। उसको पता था उसने मुझे पैदा किया है, तो वो आके इनको समझा रहा है, देखो तुम ऐसे ना करो, क्या मैं इसे छोड़कर दूसरे माबूद बना लूं? हालांकि अगर खुदा रहमान मुझे कोई नुकसान पहुंचाना चाहे तो ना इनकी शिफात मेरे किसी काम आ सकती है और ना ही वो मुझे छुड़ा सकते हैं, और अगर मैं ऐसा करूं तो मैं सारी गुमराही में मुबतला हो जाऊं। मैं तो तुम्हारे रब पर ईमान ले आया, बस तुम भी मेरी बात मान लो। ये कौन सा ईमान है? ये बोलने वाला ईमान है। याद रखिए कि ईमान गूंगा और बहरा नहीं होता। एक दफा जब दिल में ईमान आ जाता है फिर बंदा गूंगा शैतान नहीं बनता। हदीस में आता है कि किसी को हक बात पता हो और वो उसको छुपा दे तो वो गूंगा शैतान है। जब अंदर तड़प आती है, जब आपने एक बहुत ही मजे का खाना खाया होता है, फिर ये नहीं हो सकता कि आप दूसरों को इंसिस्ट ना करें, उसकी मोटिवेशन ना दें कि हाय खा के देखो, चख के देखो, मेरी जिम्मेदारी ये हो गया वो हो गया। तो हिदायत का टेस्ट जिसको मिल जाता है, जिसको अल्लाह की मोहब्बत मिल जाती है, वो कैसे सो सकता है? उसको तो चैन नहीं आता। दिन रात बाहर अंदर घर इधर उधर जहां उसको चार लोग नजर आते हैं, वो कहता है लोगों मुझसे कोई फायदा ले लो, तुमने इस चीज को मजा नहीं चखा। और आप देखिए कि इसकी दावत कितनी प्यारी, कोई उसने उन पर क्रिटिसिज्म किया, कोई उनको बुरा भला कहा, लेकिन लोग सिर्फ इतनी पुरखलूस दावत सुन के भी माइंड करते हैं। और क्या किया आखिरकार इन लोगों ने, इसे कत्ल कर दिया और इस शख्स से कह दिया गया फील अदखुल जन्ना, दाखिल हो जाओ जन्नत में। लोगों ने क्या किया और अल्लाह ने क्या किया, और अब जरा सुनिए उस शख्स का क्या हाल है। उसने कहा काश मेरी कौम को मालूम होता कि मेरे रब ने किस चीज की बदौलत मेरी मगफरत फरमा दी और मुझे बाइज्जत लोगों में दाखिल फरमाया। हबीब इसका नाम आता है, अल्लाह के नबी ने फरमाया ये वो शख्स है कि नसहत, जिसने खैर ख्वाही की अपनी कौम की जीते जी भी और मरने के बाद भी उसने की। इसको जब जन्नत दिखी तो अब जन्नत में जाने के बाद इसकी क्या ख्वाहिश होनी चाहिए थी, देखा वाह 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 कितनी अच्छी थी, कितना दीन का काम कर रही, कभी दिखा अल्लाह इनको जला मेरा हाल दिखाकर कि मुझे कितनी बड़ी जन्नत मिली है। हम तो फौरन अपनी जात की बड़ाइयों में आ जाते हैं ना, वो क्या तड़प रहा है कि अल्लाह किसी तरह इनको ये खबर पहुंचा दे कि तूने मुझे जन्नत दे दी। तो जो मेरी बातें सुनकर नहीं माने, समझिएगा, जिंदगी में बोल के तबलीग करता था ना, मेरी बातें सुन के वो तुझे नहीं पहचाना, वो मेरे इंजाम को देख के मान जाए कि मेरी बात सच्ची थी। ये है असल पैगाम, ये खैर ख्वाही। खुद को देखें, खुद से पूछें क्या इस दर्जे की खैर ख्वाही है, क्या मैं हक का साथ देने के लिए तैयार हूं चाहे सारा मुआशरा मेरे खिलाफ हो। आज हमारे अंदर ये तड़प बहुत कम हो गई। इस कैफियत को पैदा करने के लिए हम सबको इस किताब को बार बार पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि सच्चा कुरान पढ़ा हुआ शख्स जो होता है वो अपने दिल में इस तरह से खैरख्वाह हो जाता है कि फिर वो चैन से सोता नहीं, ताने नहीं देता, बल्कि वो कहता है कि लोगों को भी मेरे दिल को झांक के देखो। और आपको तक अल्लाह के नबी के दौर में भी ऐसे ही लोग थे। उरवा बिन मसूद प्यारे साहबी अल्लाह के नबी के पास आए, कहने लगे अल्लाह के नबी इजाजत दें तो मैं अपनी कौम में जाके तबलीग करूं और इनको इस्लाम की दावत दूं। शुरू दिनों की बात है इस्लाम के। आपने कहा देख लो ऐसा ना हो कि वो तुम्हें कत्ल कर दे। कहा नहीं नहीं अल्लाह के नबी ये इसकी बात नहीं है, वो उनको तो मुझसे इतना प्यार है कि अगर मैं सोया हूं तो मुझे तो जगाते भी नहीं है। ईमान होता है हमें भी अपने प्यारों अपनी दोस्तों और अपने कि ये मेरे आराम का बड़ा ख्याल रखते हैं। आपने कहा अच्छा अगर इतना भरोसा अपने दोस्तों पे तो जाइए, आप जाइए और चले गए। जब वहां गए तो उनके बुतों जरा लात और उज़ा के वो पुजारी थे, उनके ऊपर तनकीद की, कहा कि तुम्हें क्या हो गया, तुम्हें तुम ऐसी बातें करते हो। कबीला सकीफ के वो लोग थे, उन्होंने कहा कि मेरी कौम के लोगों इन बुतों को छोड़ दो, ये लात और उज़ा कुछ नहीं करते, असल चीज इस्लाम है, कबूल करो और इस्लाम कबूल कर लोगे तो सलामत हो गए। यानी तबलीग की उन्होंने। खैर कहते हैं कि अभी उन्होंने ये कलमा दोहराया ही था कि उनकी कौम के एक बदनसीब शख्स ने दूर से तीर चलाया जो उनकी रग पे लगा और उनका खून निकल गया और वो शहीद हो गए। अल्लाह के नबी सल्लम के पास जब ये मामला आया तो आपने फरमाया इसका तो हाल ऐसे ही था जैसे सूरत यासीन वाले शख्स का था, हबीब का, जिसने कहा था काश कि मेरी कौम जान लेती कि मेरे रब ने मेरी कितनी इज्जत की है। आज इज्जत कोई नहीं है, कल होगी। अब इसके बाद कुछ आयात में हमें हिदायत देने वाली जात की निशानियां दी जा रही हैं कि तुम्हें रसूलों की जुबान से जो बात कही जा रही थी ये बात तो कायनात बोल बोल के कह रही है। और आपने इन सबको पढ़ते सुनते वक्त अल्लाह ताला का कुर्ब महसूस करना है कि अल्लाह ने इस कायनात में मेरे लिए क्या कुछ पैदा कर दिया। वह आयतुल लहुम अल-अर्दुल मैता, और इन लोगों के लिए बेजान जमीन एक निशानी है, हमने इसको जिंदगी बख्शी और इसे गल्ला निकाला जिसे ये खाते। किस बात की निशानी है, नोट करते जाइए, ये बास बादल मौत की निशानी है। مکہ والوں کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ تھا، کہتے تھے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے، تو اللہ کہتے کیسے ہو سکتا ہے، زمین کے اندر ایک مردہ بیج ڈالتے ہو تو لہلہاتی بھی فصلیں نہیں نکلتی، اسی طرح تمہارے جسم بھی نکلیں گے، ہم نے اس میں سے کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کیے اور اس کے اندر سے چشمے پھوڑ نکالے تاکہ یہ اس کے پھل کھائیں، یہ سب کچھ ان کے اپنے ہاتھوں کا پیدا کیا ہوا نہیں ہے، ہے کوئی جو انگور اور انار اور اسٹرابری اور چیریز اگا سکے، یہ اللہ کی شان ہے، کیا پھر یہ شکر ادا نہیں کرتے، افلا یشکرون، کیا ان نعمتوں کو پا کر کھا کر نعمتوں کا قدر نہیں کرتے، پاک وہ ذات جس نے جملہ قسم کے جوڑے پیدا کیے خواب نر ہوں یا مادہ، نوٹ کیجئے شروع سے یہ کانسیپٹ ہے کہ دنیا کی ہر چیز جوڑوں میں، کچھ جوڑے تو ہمیں عام طور پہ دکھتے ہیں نا، کہا کہ کیا ان کو یہ جوڑے نہیں دکھتے جو زمین کی نباتات میں سے ہوں یا خود ان کی اپنی جنس یعنی نو انسانی میں سے یا ان اشیاء میں سے جن کو یہ جانتے تک نہیں ہے، آپ دیکھیے کہ یہ سوچ تو شروع سے ہے نا کہ میل اینڈ فیمل، مرد ہے تو عورت ہے، اسی طرح کتا ہے تو اس کے ساتھ فیمل یعنی کتیا بھی موجود ہے، لیکن آج سائنس نے اس آیت کو ثابت کر دیا کہ کائنات کی ہر چیز میں دو اپوزٹ چیزیں، الیکٹران ہے تو پروٹون ہے، نارتھ ہے تو ساؤتھ ہے، ایسٹ ہے تو ویسٹ ہے، کائنات کی ہر چیز کا جوڑا ہے، اگر آپ دیکھیں اس قانون پہ رہے تو رات اور دن، سورج اور چاند، صبح اور شام، تو پھر اس دنیا کا جوڑا بس بادل، موت سے نشانی ہے اس میں، کہ اس دنیا کا پیئر آخرت ہے، ہر چیز اپنے اپوزٹ کے ساتھ پہچانی جاتی ہے، دنیا میں صرف ایک ہستی ایسی ہے جس کا کوئی جوڑا نہیں، قل ہو اللہ احد، اور وہ اللہ کی ذات ہے، حتیٰ کہ آپ دیکھیں یہ لکڑی کا میز آپ کے سامنے ہے نا، اب یہ حرکت نہیں کر رہا نا اس وقت، آپ کے پیپر، آپ کے پین، آپ کی کتابیں سائلنٹ ہیں، لیکن آپ اس کو مائکروسکوپ کے نیچے رکھیں گے نا تو اس کے اندر الیکٹران پروٹون گھوم رہے ہیں اور حرکت میں زندگی ہے، اور ہر آپ کبھی یہ پڑھ کے دیکھیں، یہ چیز جب میں نے پڑھی میرا دل ہل کے رہ گیا، ہر چیز اسی طرح گھوم رہی ہے جیسے ہم طواف کرتے ہیں، خانہ کا پکے گئے، الیکٹران کا طواف، پروٹون کا طواف، کائنات کی ہر چیز توان و کرہن اللہ کے آگے جھک رہی ہے، لیکن انسان نہیں جھکتا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ تو جانتے ہی نہیں ان چیزوں کو، ان کو اللہ نے دیا کیا، کس کس قسم کی چیزیں ہیں، ایک اور نشانی، وایت لہم اللیل، اور ان کے لیے ایک اور نشانی ہے، ہم ان کے اوپر سے دن ہٹا دیتے ہیں تو ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے، سوچے ذرا یہ رات بھی کیا چیز ہے، اتنی بڑی چھتری ہے کہ جو سارے آسمان پہ چھا جاتی ہے اور سورج چھپ جاتا ہے، ہوتا تو سورج ادھر ہی ہے، چاند بھی دن میں ہوتا ہے، لیکن اوپر ایک چھتری آ گئی، تو کیا ہوا اگر تمہارے دلوں پہ غموں کی رات آ گئی، کیا ہوا اگر تم صحت کی بجائے بیمار ہو گئے، بس اندر کی آنکھ کھولو، دیکھیے ہدایت کے لیے اندر کی تبدیلی لازمی ہے، جب تک آپ اندر سے نہیں ٹوٹیں گے نا یہ باہر کا بھی فائدہ نہیں ہوگا، جس طرح ایک انسان اللہ تعالیٰ کی بات کو سن کر اپنا محاسبہ کرنے لگتا ہے، اگر اس کے اندر کی تڑپ باہر کی طلب کے ساتھ مل جائے تو اللہ اس کو ہدایت دے دیتے ہیں، اور سورج کو بھی دیکھ لو وہ اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے، 1435 سال پہلے قرآن نے بتا دیا کہ سورج گھوم رہا ہے، اس سالوں کے بیچ کے سالوں میں آپ جا کے نظریات پڑھیے سورج کے بارے میں، کسی نے کہا سورج کھڑا ہے تو زمین گھوم رہی ہے، کسی نے کہا چاند گھوم رہا ہے تو سورج کھڑا ہے، اور آج اس بات پہ آگے کہ سورج گھوم رہا ہے، قرآن میں یہ سائنس ساری آپ کو پڑھا دی، یہ زبردست تعلیم ہستی کا باندھا ہوا حساب ہے، کون سورج کو روز میسج دیتا ہے کہ اس وقت اتنے وقت میں اس عروج پہ ہونا، پھر جھک جانا، پھر ادھر جانا، اب تک کہ ہر روز کے سن رائز اور سن سیٹ میں چند سیکنڈ کا فرق ہوتا ہے، یہ کس نے پروگرامنگ کی، یہ آٹومیشن ہے تو کس نے کی، اور کتنے سالوں کی بھی ہے تو آپ کیوں نہیں کر کے دکھاتے، روک کے دکھائیے، اور آپ کو تو کہ یہ سورج اتنا بڑا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ ہر روز رات کو جب جاتا ہے کہیں تو یہ اللہ کے عرش کے آگے جا کے سجدے میں چلا جاتا ہے، پھر اللہ جب تک اس کو حکم نہیں دیتے وہ سر نہیں اٹھاتا، پھر جب اس اگلے دن اس جگہ وقت آتا ہے تو کہا جاتا ہے اٹھ جا واپس جا اور مشرق سے نکل، اور ایک ایسی رات آئے گی 3 راتوں کے برابر، سورج جب اللہ کے عرش کے آگے جائے گا اللہ اس کو اٹھنے کا حکم نہیں دے گا، جھکا جھکا جھکا، اور 3 راتوں کے بعد اللہ اس کو کہیں گے جدھر سے تو بھی واپس آئے ادھر پلٹ، اور یہ وہ وقت ہوگا جب سورج مشرق کی بجائے مغرب کی طرف سے نکلے گا، اور اس کے بعد پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، اتنی بڑی نشانی دے کر لوگ توبہ کریں گے، اسلام لائیں گے، لیکن فرمایا کہ نہیں ان کا ایمان فائدہ نہیں دے گا، سورہ نمل میں بھی اور پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، تو پتا کیا چلا کہ یہ ساری چیزیں پڑھتے وقت دیکھیے کہ یہ کائنات کتنی ایکیوریٹ ہے، کتنی ایکیوریٹ ہے، والقمر قدرناہ منازل، چاند اس کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کر دی، یہاں تک ان سے گزرتا وہ پھر کھجور کی سوکھی شاخ کی مانند رہ جاتا ہے، جیسے اب چاند گھٹ رہے نا आप देखते होंगे रात को चांद को, जब रमजान के शुरू का चांद देखते थे तो होप थी। पहले दिन पहला चांद, पहले दिन नहीं शायद दूसरे दिन जब मस्जिद से निकली तो मैंने देखा तो वो बिल्कुल बारीक सा था, तो समझ आ गया कि आज ये दूसरे दिन का चांद है, क्योंकि अमूमन पहले दिन का चांद हमें नहीं दिखता अपनी आंख से, इल्ला ये कि किसी ऐसी जगह पर। फिर हर दिन चांद बड़ा होता था तो मुझे ऐसे फीलिंग आती थी कि शायद इसी तरह अल्लाह के पास हमारे दर्जे बड़े हों, हमारे अंदर ईमान आए। फिर जब वो 13, 14, 15 के 3 रातों के चांद देखे तो उसके बाद तो मुझे बस एक ही बात याद आती है कि अल्लाह का चेहरा, तुम अल्लाह को ऐसे देखोगे जैसे चांद को देखते हो बगैर बादलों के। और अब आप देखिए दिन ब दिन चांद कम हो रहा है, ऐसे लगता है कि जिस्म से जान निकल रही है, वल्लाही ऐसे लग रहा है रमजान की मौत हो रही है, कमजोर है सूखी हुई शाख की तरह आखिरी दिनों का चांद। और आप कहते हैं कि फिर आखिरी 2-3 दिन तक चांद नहीं दिखता। और कभी आपने किसी खिड़की से देखें तो आपको चांद दिखेगा, रात को इधर होता है उसके बाद इधर होता है और सहरी के वक्त मेरी इस खिड़की में आ जाता है। आप नोट करके देखेंगे एक सेट सिस्टम के साथ चलता है, और कुछ दिन ऐसे होंगे नहीं दिखेगा। ये कौन कर रहा है? ज़ालिक तकदीर अल अज़ीज़ अल अलीम। क्या सिखाए कि तुम्हारी जिंदगी की खुशियां गम, तुम्हें बढ़ाना तुम्हें कम करना भी उसी मालिक के हाथ में, अपने आप को उसके हाथ में दो। ये है बंदगी, ये है कि अपने आप को खुद बड़ा समझने की बजाय अल्लाह की बड़ाई को मान लो। और फरमाया देखो कैसा प्यारा निजाम है, तुम अपनी बेतरतीबियां देखो और अल्लाह की तरतीब देखो। लशम्सु यंबगी लहा तुद्रिकल कमर वलल्लैलु साबिकुन नहार, ना तो सूरज के बस में कि वो चांद को जा पकड़े और ना रात दिन पर सबकत ले जाती है। कभी आपने सुना कि दोनों चीजें इकट्ठी हुई, ये तो क्यामत ही है। वह जुमिया शम्स वल कमर, कितना प्यारा निजाम है। हमारी कितनी चीजें खराब हो जाती हैं, बाज दफा दो चीजों को मर्ज करने की कोशिश करते हैं तो टेढ़ी चीज बन जाती है। तो अल्लाह ने कैसा निजाम रखा, दुआ कीजिए अल्लाह हमें अपने कामों को ऐसे करने वाला बना दे, इतने एक्यूरेट इतने सीधे इतने ठीक ठाक कि वह कुल्लू भी फलक यसबहून, एक फलक में सब तैर रहे हैं और उसके बावजूद कोई टकराव नहीं। दुआ कीजिए, देखिए जहां भी इंसान रहता है कुछ चांद के जहन के होते हैं, कुछ सूरज के होते हैं, कुछ गर्म मिजाज होते हैं, कुछ ठंडे होते हैं, कुछ में जोश होता है कुछ में होश होता है। इसी दुनिया में रहना है, एक घर में मिजाज फर्क हो सकते हैं, तो ये सीखने की बातें हैं कि खिलाफ मिजाज खिलाफ तबीयत लोगों के साथ कैसे जियो। बिगड़े से बिगड़े शख्स को ले आओ फिर देखो उसके साथ कुछ भी नहीं होगा मेरा बिगाड़, क्योंकि मैंने उससे उलझना ही नहीं है। एक रोड पे आप जाते हैं, साइकिलें भी चल रही होती हैं, छोटी गाड़ियां बड़ी भी हैं, ट्रक भी हैं, सब कुल्लू फी फलक यसबहून की तरह चल रहे हैं तो ठीक है। और आप अपने मुल्कों की तरह ट्रैफिक देख लें, कोने में से भी साइकिल निकल आएगा और कहीं से मोटरसाइकिल आएगा और कहीं से रिक्शा निकल आएगा, और फिर वो जो जल्दी में करते हैं सब कुछ वो सबको रोक के पीछे बैठ लेते हैं। तो डिसिप्लिन सीखना है। कायनात हम सबको तरतीब सिखाती है, अल्लाह हम सब की बेतरतीबियां खत्म कर दे।